दोस्तानी के तन मन में नई जान फूंक देने वाला ये पवित्र गीत हमारी धरती माता का गुणगान करता है, हमारे जीवन में उत्साह भरता है। वंदे मातरम कहकर हम अपनी भारत माता की वंदना करते हैं, उसके गुण गाते हैं। हम एहसान मानते हैं सुंदर जल से भरी हुई अपनी नदियों और झीलों का, अपने तालाबों और सरोवरों का, झरनों और कुओं का। जल बिना जीवन कहाँ। जीवन को ताजगी देने वाला पवन हमारे देश में बहता है। हम एहसान मानते हैं फल देने वाले पेड़ पौधों का, एहसान मंद हैं हम भारत भूमि के हरियाले खेतों के जो हमें अन्न देते हैं। धरती माता के आंचल में हम सुनहरे दिन और उजाली रातें देखते हैं। आंखों को आनंद देने वाले फूल हमारी धरती पर खिलते हैं। छायादार वृक्षों पर आने वाले पत्ते मन प्रसन्न करते हैं। हमारी धरती माता ने हमें मित्रता से मुस्कुराना और मीठा बोलना सिखाया है। यदि हम भूमि की सेवा करें तो वो हमें सब तरह से सुखी बनाती है, हमें वरदान देती है। ऐसी है भारत भूमि, हमारी धरती माता, हमारी भारत माता। क्यों ना हम इसकी वंदना करें।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, शस्य श्यामला मातरम, वंदे
सन 1906 में कांग्रेस की सालाना बैठक में यानी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कवींद्र रविंद्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गाकर सभा का शुभारंभ किया। इस कलकत्ता कांग्रेस के सभापति थे दादा भाई नौरोजी, जिनके भाषण में स्वराज शब्द उभर कर आया। स्वदेश प्रेम की भावना बलवती हुई और तय पाया कि स्वदेश के लोग अपने देश में बनी हुई स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें। इस तरह स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन में स्वदेश प्रेम के गीत गूंजे। हमें याद आया सदियों पुराना महावाक्य, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हमारी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमें याद आए अपने इतिहास के वो सुनहरे दिन जब हिंदुस्तान को दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी आकर्षण से तो विदेशी हमारे देश में व्यापारी बनकर आए और हमारे शासक बन बैठे, अपनी चालाकी और हमारी गफलत से। बहुत हुआ, अब ये ना होगा। पवित्र गीत वंदे मातरम ने हमें जगा दिया था। स्वदेश प्रेम से भरपूर स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम भारतवासियों का मूल मंत्र बन गया। ये मंत्र बंकिम चंद्र चटर्जी के देशभक्त हृदय से एक पवित्र झरने की तरह से फूटा था। स्वतंत्रता संग्राम में गंगा की तरह ये गीत प्रवाहित हुआ, गंगा सागर बना और फिर सागर से उठने वाले मेघों की तरह संपूर्ण भारतवर्ष पर छा गया और बरसा। भारतवासियों के हृदय वंदे मातरम के अमृत जल से लहराने लगे। प्रेरणा पाकर भारत भर में देशभक्ति के भाव भरे गीत उभरे। द्विजेंद्र लाल राय का देश भूमि वंदना का गीत गूंजा। पश्चिम भारत में क्रांति का जय जयकार हुआ। दादाभाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उच्चारण किया। लोकमान्य तिलक ने घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय, बंगाल के महाभाव वक्ता बिपिन चंद्र पाल और उनमें मध्य बिंदु के समान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की त्रिमूर्ति लाल बाल पाल के रूप में विख्यात हुई। इनके गर्मजोशी ने भारत भर को झकझोर दिया। अंग्रेजों को फिक्र हुई, क्या हिंदुस्तान जो अंग्रेजी साम्राज्य की शान था उनके हाथ से निकल जाएगा? हिंदुस्तान की शान में अल्लामा इकबाल का कौमी तराना उत्तर में गूंजा।
हमारा हमारा सारे
हिंदुस्तान का गौरवपूर्ण लंबा इतिहास आंखों के सामने उजागर हो गया। खोजबीन शुरू हुई, भावना का साथ देने के लिए विचार जागे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में लोकतंत्र की आवाज बुलंद की। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। बीता हुआ कल, वर्तमान, आज और आने वाले कल को ध्यान में रखकर सभी को मिल बैठकर राष्ट्रीय समस्या पर विचार करने पर जोर दिया गया। दक्षिण भारत में क्रांति दृष्टा कवि सुब्रमण्यम भारती ने संपूर्ण भारत और संपूर्ण भारतीय जन समुदाय का जय जयकार किया। सर्वश्री भारत जन समुदाय सदा जय हो, जय हो, जय हो। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी गीतांजलि में भारत के भावी नागरिक का चित्र प्रस्तुत किया। देशभक्ति की गहरी भावना और स्वतंत्रता पाने में उपयोगी उच्च विचारों का संगम गांधी जी के तपस्वी व्यक्तित्व में उभरकर देश के सामने आया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह संग्राम जीतकर स्वदेश आए थे। वो कर्मवीर गांधी कहलाते थे। कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी कहलाए, क्योंकि उनमें भारत और भारतवासियों की आत्मा बोलती और काम करती थी। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य से टक्कर ली जो संपूर्ण भूमंडल में फैला हुआ था। फैलाव ऐसा कि सूरज उस पर कभी ढलता ही न था। सात समंदर उसके तहत में थे। गर्व था कि ब्रिटानिया रूल्स द वेव्स, यानी लहराते हुए सात समंदरों पर ब्रिटेन का शासन है। महात्मा गांधी ने 30 बरस में इस विशाल साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। बिना हरबा हथियार के ऊंचे दर्जे की अपनी इंसानियत, अपनी नेक नियत और सत्य और अहिंसा के बल पर।
रास्ते अलग अलग है, ठिका ना तो एक है।
रास्ते अलग अलग है, ठिका ना तो एक है।
मंजिल हर एक शख्स को पाना तो एक है।
मंजिल हर एक शख्स को पाना तो एक है। मंजिल हर एक शख्स को पाना तो एक है। रास्ते अलग अलग है।
6 अप्रैल 1919 का वो पवित्र दिन जब भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा समा बंधा कि अंग्रेजी हुकूमत घबरा गई। एक हफ्ता बाद अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को डराने धमकाने के लिए भारतीय प्रजा पर रौब गालिब करने की नियत से जलियांवाला बाग में भीषण और बर्बरतापूर्ण हत्याकांड कर डाला। नतीजा ये हुआ कि भारत ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प कर लिया। इतिहास ने करवट बदली, देश काल पलट गया। जलियांवाला बाग के भयंकर हत्याकांड में स्त्री, बच्चे, बूढ़े, जवान, सैकड़ों निहत्थे लोग गोलियों जीरो से भून दिए गए। अपने संतान का ये हाल देखकर भारत माता निश्चय ही शोक में डूब गई। हिंदू मुसलमान भारत संतान ने माता का धीरज बंधाया। ऐ मादरे हिंद, ना हो गमगी, दिन अच्छे आने वाले हैं। बात सही साबित हुई। खिलाफत आंदोलन ने भी महात्मा गांधी को ही अपना रहनुमा माना। मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली गांधी जी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। गांधी जी ने सब देशवासियों को एकजुट किया और समझाया, विदेशी शासन के अन्याय से असहयोग करो, आपस में सहयोग करो, निडर होकर लोहा लो विदेशी सरकार से, लेकिन हथियार हमारे सुनहले हो, और वो भी सिर्फ दो, सत्य और अहिंसा। अहिंसक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा, न लुका छिपी न षड्यंत्र, खुले खजाने छाती खोल कर आ गया, गोली खाओ मर जाओ पर मारो मत। ये भारत की आत्मा की आवाज थी। आत्मा की विजय हुई। संपूर्ण भारतीय जनता महात्मा गांधी के साथ थी। चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। कराची कांग्रेस में हमारा कौमी झंडा स्वीकार किया गया। तिरंगे के तीन रंग, केसरी, सफेद और हरा। महात्मा गांधी ने हमें समझाया, केसरी वीरता और बलिदान का रंग है, जो हमारे कौमी झंडे में सबसे ऊपर है। बीच का सफेद रंग सत्य और शांति का रंग है। नीचे यानी नींव की जगह हरा रंग श्रद्धा और उदारता का रंग। कौमी झंडे की सफेद पट्टी के बीचों बीच चरखा का चिन्ह था, जो हमें अपने देश की उजड़ी हुई दस्तकारी को फिर से उबारने का संदेश देता था। आदेश था कि हम सब अपने हाथों को काम में लगाएं। लाख लाख हाथ वही जगन्नाथ। गांधी जी देश के 7 लाख गांव को फिर खुशहाल देखना चाहते थे, ताकि धरती के लाल मुक्त कंठ से फिर खुशहाली के गीत गा सके।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
भारत खुशहाल था जब भारत के गांव खुशहाल थे। भारत स्वतंत्र था जब भारत के गांव परतंत्र न थे। भारत सशक्त था जब भारत के गांव दीनहीन न थे। भारत सचमुच गांव में रहता है। गांधी जी गांव की दुर्दशा को दूर करना चाहते थे। वो जानते थे कि दूर दिशावर से आए हुए विदेशियों का यहाँ आना तो सोने की चिड़िया के कारण ही हुआ, लेकिन उन विदेशी चिड़ीमारों ने जाल में फंसाकर सोने की चिड़िया को अधमरा कर दिया। उसे जाल से छुड़ाने के लिए गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा, नमक सत्याग्रह का अहिंसक आंदोलन। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 79 सत्याग्रह सिपाहियों के साथ कूच किया। तब कौन जानता था कि हमारे अहिंसक सेनानायक महात्मा गांधी की उम्र के वर्ष भी 79 ही होंगे। लेकिन संग्राम में मरने जीने की किसे सुध रहती है। संघर्ष हुआ, समझौता हुआ, लेकिन साम्राज्यशाही बाज ना आई। उसकी नियत नेक न थी। गांधी जी ने अंतिम संग्राम की घोषणा अगस्त 1942 में की। ये संग्राम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ। कौमी नारा था, करो या मरो, डू और डाई। हिमालय के समान ऊंचे आदर्श और उज्जवल चरित्र वाले हमारे महान नेता महात्मा गांधी ने विदेशी हुकूमत को न्याय और सत्य के नाम पर फिर ललकारा था।
आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
चार बरस के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन से विदेशी साम्राज्य शक्ति के पांव उखड़ गए।
दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल,
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
धरती पे लड़ी तूने अजब ढप की लड़ी,